यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा सम्मत 2050 तदनुसार दिनांक 31 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम
वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
दो चीज है, एक नहीं बदलने वाली है, एक बदलने वाली है। बड़ी सीधी सरल बात है, इसको बुद्धिपूर्वक समझने में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं होता। बड़ी सीधी सरल बात है, एक बदलने वाली वस्तु है, एक न बदलने वाली वस्तु है। जैसे संसार मात्र सब बदलने वाला है, त्रिलोकी कह दो, चौदह भुवन कह दो, जितना जो कुछ संसार है सबका सब बदलने वाला ही बदलने वाला है। और संसार में जो परिपूर्ण रहने वाला परमात्मा है वो बदलने वाला है ही नहीं, सदा एक रूप रहने वाला है। ये दो बात है। उस संसार का नमूना एक शरीर है ये, जैसे आप व्यापार करते हो तो उसका नमूना देखते हो कि माल कैसा है, तो संसार का नमूना ये शरीर है। तो जो माल होता है वो नमूने में मालूम हो जाता है, सैकड़ों बोरा भरे हैं, एक बोरी के परखी लगा देते हो वो आ जाता है, ठीक ऐसा माल है। ऐसे ये परखी लगाओ मानो परीक्षा करने के लिए, तो ये शरीर संसार मात्र का एक नमूना है। उसमें शरीर बदलने वाला है, आप न बदलने वाले हो, ये दो चीज है। बालकपन से आज तक आप देखो, आपको मैं वही हूं जो बालक था, मैं वही हूं, तो आप बदले नहीं है। और शरीर बालकपन में था वो आज नहीं है, ये बदल गया। तो ये बदलने वाला विभाग है और ये न बदलने वाला विभाग है, दो विभाग है। इन दो विभाग को ठीक तरह से अलग कर देना मुक्ति है और मिला देना बंधन है। शरीर के साथ आप एकता कर लेते हो बंधन हो गया, और शरीर से आप अलग अनुभव कर लो तो मुक्त हो गए। तो आप तो मुक्त हो, कैसे? शरीर के बदलने पर आप नहीं बदले तो आप तो है जो के क्यों रहे, बदला वो शरीर बदला तो आप तो मुक्ति रहे ना, आप तो अपने को प्राप्त हैं ही, तो आप नित्य प्राप्त हैं। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, तो नित्य प्राप्त को प्राप्त क्या करना है, अप्राप्त का जो वहम है वो मिटाना है। मैं प्राप्त नहीं हुआ हूँ, तत्व के नहीं हूँ, परमात्मा को नहीं जानता हूँ, ये मिटाना है। ये मिटाना कोरा सीखना नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ये सीखना नहीं है, किंतु अनुभव कर लेना। अनुभव जैसे मैंने बताया कि शरीर बदलने पर मैं नहीं बदला हूँ, ऐसा विचार कर नहीं बदलने वाला मेरा स्वरूप है, बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना, सीख लेना और चीज है, अनुभव करना और चीज है। अनुभव हो जाए शरीर का रोगी होना, तो मैं रोगी हो गया ये नहीं हो, मैं तो रोगी हुआ ही नहीं, मेरे में रोग आता ही नहीं, रोग मेरे तक पहुंचता ही नहीं। सत्व रज तम गुण नहीं पहुंचते, गुणों का कारण प्रकृति है, सत्वम रजस तम गुणा प्रकृति संभव, वो प्रकृति भी मेरे तक नहीं पहुंचती, तो गुण मेरे तक कैसे पहुंचेंगे? अगर गुण भी नहीं पहुंचेंगे तो ये बीमारी से कैसे पहुंचेंगी मेरे तक? ये तो शरीर में होने वाली है। अब शरीर में होने वाला रोग भी मेरे नहीं पहुंचता, तो शरीर के साथ रहने वाले भाई बंधु कुटुंबी कोई मर गया तो मेरे तक कैसे पहुंची वो मौत? वो शरीर तक भी नहीं पहुंची, रोग शरीर तक तो पहुंचा, तो उसका शोक चिंता मेरे कैसे हो? अगर शोक चिंता होती है तो फिर आपने शरीर से अपने को अलग अनुभव नहीं किया, एक करके अनुभव करते हो, तो ज्ञान की बातें सीखते हो, सीखी हुई काम नहीं देती, एक एक दुए दुए तीय तीन चौके चार सीख लिया, ऐसे व्याद वेदांत की सीख ली, पांच कोष होते हैं, तीन शरीर होते हैं, तीन अवस्था होती है, सीख लिया, एक एक सीख जाओ, सीख लिया, अच्छी बात है ये भी सीख ली अच्छी, न्याय क्या कहता है, योग क्या कहता है, सांख क्या कहता है, पूर्व मनुष्य क्या कहती है, उत्तर मनुष्य क्या कहती है, सीख ली। सीखना काम नहीं देता है, अनुभव काम देता है। अनुभव कभी बदलता नहीं, बदल सकता ही नहीं, ब्रह्मा जी कई होकर मर जाएंगे पर अनुभव वैसा वैसा रहेगा। स्वर्गे भी नोपजाए अंत प्रलय नंति, महासर्ग में भी ये पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी उनकी व्यथा नहीं होती। इदं ज्ञानोपासते मम साधन में आगता, चौदहवें अध्याय का दूसरा श्लोक है। इदं ज्ञान तो ज्ञान की महिमा कही पहले श्लोक में, उस ज्ञान को प्राप्त होने पर स्वर्गे नोपजाए थे प्रलय नंति, महासर्ग में भी ये व्यथित महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। जब ये थम्बा है मैं अलग हूं, थम्बे को काटे गए तो मेरा क्या फर्क पड़ता है? ऐसे थम्बे की तरह शरीर है, शरीर बीमार होता है मर जाता है, तो आप मर जाते हो, आप नहीं मरते हो। अरे मर जाओ तो हमें मारवाड़ी भाषा से कहूं पापो ही कट जाए, आफत कौन भोगेगा? पाप का नरगों कौन जाएगा? पाप कट गयो, कोई पाप कट गयो मर जाएगा, पर मरे ही वो नहीं, अब करें क्या इसका, मरता है ही नहीं। चाहे तो शरीर के साथ मर जाए तो काम बन जाए, और चाहे आप नित्य रहते हो शरीर नित्य रह जाए तो काम बन जाए, ना तो ये नित्य रहता है ना आत्मा मरता, ऐसा मिल गया एक, अब आफत हो गई, एक तो मरने वाला एक न मरने वाला, आप स्वयं न मरने वाले हो, ऐसा शरीर मरने वाला है, क्यों बदलता है? ये बदलता है वही बदलेगा, मौत में मौत रूप में बदल गया वो, आप नहीं बदलने वाले, नहीं बदलते हैं, तो बदलने वाला बदलता ही रहे, इसका बदल नित्य निरंतर ही बात है, तो नित्य नहीं बदलने वाला नित्य प्राप्त है, और बदलने वाला कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कभी प्राप्त हो सकता ही नहीं। तो बदलते ही प्राप्त कैसे हो जाएगा? वो तो बदलते ही बदलता रहा, तो अपनी धुन में एकदम प्रवाह बह रहा है। वो मिल गया, मिल जाएगा कैसे आपको? वह होता है धन मिल गया, कुटुंब मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, आराम मिल गया, कुछ नहीं मिला। मिल सकते आप तक पहुंचता ही नहीं, कैसे मिल गया? इस शरीर में मिलता करता है, वो शरीर अलग है, आप अलग हो। ये विवेक है, कल बताया था ना, विश्वास करो, विचार करो, तो विचार विवेक होता है। विवेक सीधी बात है। तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, भक्त हो चाहे अभक्त हो, जीवन मुक्त हो चाहे बद्ध हो, दो बातों दो है ही है सबकी। बद्ध की भी दो है, मुक्त की भी दो है, ज्ञानी की भी, अज्ञानी की, पापी की, पुण्यात्मा की, दो चीज तो है ही। अब दो चीज में हो क्या करना चाहिए? साधकों के लिए बात है कि अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए, अपनी जो आदत है उसको शुद्ध बनाना है, ना आत्मा को बनाना है ना शरीर को बनाना है, जो बनाना कुछ नहीं है। स्वभाव शुद्ध बन जाएगा ठीक है, तो संत है, महात्मा है, श्रेष्ठ है, क्या है, उनका स्वभाव अच्छा है। स्वभाव बदला नहीं और कर दे क्या हुआ? संत कहते हैं साफ, जो नाम जप के आचार्य हुए हैं, राम राम करने के आचार्य, जो कहते हैं नाम लिया गुण ना मिटा तेमन में भागा तेज, हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज, वह जेज रही पूर्ण तक काम हुआ नहीं। तो ज्ञान विचार यार क्या होगा? स्वभाव बदलेगा। जितने अच्छे आदमी उनका स्वभाव बदला है, कोई आत्मा बदली है क्या? शरीर बदला है, स्वभाव बदला है। तत्व ज्ञान होने पर स्वभाव बदल जाता है। ये अशुद्धि जितनी आती है केवल प्रकृति में नहीं है और केवल चेतन तत्व में ही नहीं है, दोनों के एक मिलाद है इस अज्ञान में, दोनों घुल मिले में, इसमें सब अवगुण है, सब गलतियां इसमें है। तो इसको शुद्ध करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। अरे शुद्ध तो करोगे नहीं, अरे बातें करते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। यह बात है कि जो विषय चलेगा उसको समझ लोगे। यह तीन गुण होते हैं, तीन अवस्था होती है, यह पांच कोष होते हैं, तीन शरीर होते हैं, ये बातें आएगी तो हमारे पति दिख रहे हैं, पढ़ा पढ़ी हो रहा है उसने जान रहे, जो पढ़ रहे वो देख लेगा ठीक समझ कर। समझ इसका नाम नहीं है, ये तो याद करना है। समझ उसका नाम है जो अनुभव हो जाए साफ, बिल्कुल आप साफ ही। अब अनुभव में अभ्यास नहीं है, ये बात नहीं लगेगी, मैं थोड़ी सुन लेना कान खोल के उसी तरह से। तत्व ज्ञान में अभ्यास नहीं है, अभ्यास में तत्व ज्ञान नहीं है। अभ्यास एक नई अवस्था पैदा करता है। तत्व ज्ञान होता है विवेक से, अभ्यास से नहीं होता है तत्व ज्ञान। अभ्यास से फायदा होगा, स्वभाव सुधरेगा, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव अभी है जिसे अच्छा हो जाएगा, अच्छा अभ्यास को अच्छा हो जाएगा, जैसे अभ्यास हो रहा है स्वभाव बन जाएगा। बस स्वभाव से अतीत है आप, तो वहां अभ्यास क्या चलेगा? अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, इनके द्वारा होगा, इनके बिना अभ्यास कैसे होगा? और इनके द्वारा होगा तो इनका साथ रखना ही पड़ेगा, इनकी गर्ज करनी ही पड़ेगी, तो जड़ता में फंसे ही रहोगे। मेरी बात का दुरुपयोग मत करना, मेरी बात का दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग क्या होता है? तो बस राम राम ही नहीं करा, अभ्यास क्यों करा, राम राम करें ही नहीं, सत्संग करें ही नहीं, सत्साज पढ़ना ही नहीं, ये दुरुपयोग है मेरी बात का। मेरा ये मतलब नहीं राम राम मत करो, अभ्यास जप मत करो, ध्यान मत करो, चिंतन मत करो, शास्त्र मत पढ़ो, सत्संग मत पढ़ो, ये मेरा अभ्यास कहना नहीं है। आप तत्व ज्ञान चाहते हो तो उनमें उपयोगी हो जाएगी, भी नाम का जप उपयोग है, शास्त्रों का पढ़ना उपयोगी है, सत्संग करना उपयोगी है, ये सब उपयोगी है, परंतु अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है। तत्व मिलता है वहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। नीचे खड़ा है उसको सीढ़ियों की आवश्यकता है, पर ठेठ पहुंचे अब सीढ़ियों क्या करे, वो सीढ़ियों की जरूरत है जब नीचे खड़ा है तो। तत्व ज्ञान में भी आवश्यकता नहीं है, तो ज्ञान ठीक ठीक तरह जड़ चेतन का विवेक हो जाए अलग अलग, वहां आप से आप स्वभाव सुधर जाएगा, बिना सुधारे सुधर जाएगा, अंतगण निर्मल हो जाएगा, आप से आप हो जाएगा, व्यवहार आपका निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। मैं तो यहां तक मानता हूं, पता नहीं है परीक्षा मैंने की नहीं है, पर तत्व का क्या खून और तरह का हुआ, शरीर और तरह का हुआ, मैंने पूछा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, परंतु मैं विचार करता हूं शास्त्रों की दृष्टि से उसके परिवर्तन हो जाएगा एकदम। तो इस वास्ते अभ्यास की आवश्यकता है, भजन ध्यान करने में, मन के लगाने में, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोध, तो वृत्तियों के निरोध करने में इसमें लगेगा अभ्यास। तत्व ज्ञान में अभ्यास नहीं है, वो तो बोध है, बोध में अभ्यास कैसा, अभ्यास में बोध कैसा। मैं अभ्यास का खंडन नहीं करता हूं, ये अगर अभ्यास का खंडन आप मान लोगे तो मेरी बात का दुरुपयोग किया, मेरी बात को ठीक समझा नहीं। भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, इससे बोध प्रकट होगा, बोध में फायदा होगा, परंतु जहां बोध है वहां अभ्यास नहीं, जहां अभ्यास है वहां बोध नहीं, जहां सीढ़ियां है वहां छात नहीं है, छात है वहां सीढ़ियां नहीं है, पर सीढ़ियां उपयोगी नहीं है कैसे कह दिया जाए, छात पर पहुंचने के उपयोगी है, पर फिर साथ की बात होगी वहां सीढ़ियां कहां है, सीढ़ियां दिख रहेगी। तो तत्व ज्ञान जहां होता है वहां अभ्यास नहीं है, बोध है वहां, तो जड़ चेतन का विवेक, जैसे मैंने अभी कहा कि एक दो बात है, एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है वो बदलेगा ही बदलेगा, तो अभ्यास से बदलना ही बदलना होता है, एक और तरह का अभ्यास है, दूसरी तरह का अभ्यास हो गया वो बदलने वाले का बदलेगा, तब तो बदलेगा क्या, वो तो है जो ही रहता है, उसमें बदलते ही नहीं, तो उसमें अभ्यास क्या काम करेगा, बदलने वाले में काम करेगा, जो अच्छा अभ्यास करो अच्छा हो जाएगा, इसमें कहना ही क्या है। कहते बिना बदले तत्व ज्ञान हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तत्व ज्ञान ठीक वैराग्य होता है पदार्थों से, भोगों से, मान आदर सत्कार शरीर आदि से अब वैराग्य हो, तो वैराग्य होने पर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मन के निरोध में का अभ्यास वैराग्य भाग कर निरोध, अभ्यास कौन थे वैराग्य से गृह्य थे, तो मन को पकड़ना हो तो अभ्यास करो, उस मन के पकड़ने के लिए भी अभ्यास इतना काम कारगर नहीं है जितना वास्तव में तत्व ज्ञान काम करता है। योग वशिष्ठ में आया है मन के निग्रह के विषय में बताया है कि अप्यपि पानाद महत सुमेरोन मूलनादपि, समुद्र को पी जाना सुगम है परंतु मन में बस मन को बस करना कठिन है, योग वश कहते हैं। सुमेरु पर्वत को उखाड़ना सुगम है परंतु विषमश चित्त निग्रह चित्त को पकड़ने न कठिन है, ऐसा वर्णन किया है। फिर के चित्त को कैसे पकड़ा जाए, तो चित्त के पकड़ने के लिए कई बातें बताई है, उसमें चार बातें बताई है चित्त के पकड़ने के लिए। तो चित्त पकड़ा हुआ हो, चित्त वश में हो, वो परमात्मा को प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा, क्योंकि चित्त में संबंध विच्छेद करना है, बुद्धि में संबंध विच्छेद करना है, तो विवेक जागृत करना है, तो विवेक जागृत में बुद्धि शुद्ध होगी, अंतर्गण शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, व्यवहार शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, तभी काम होगा। इस वास्ते इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है अभ्यास की। परंतु पारमार्थिक बातों का अगर ठीक मनन हो, समझ में आ जाए, तो इन बातों की जरूरत नहीं रहती। एक मार्ग होता है रस्ते रस्ते चलना मनुष्य का, उसमें पिपील का मार्ग का है। शास्त्र में दो तरह से मार्ग बताया है, एक पिपील का मार्ग है, एक विहंगम मार्ग है। तो पिपील का नाम है छोटी कीड़ी का नाव, तो छोटा सा नाव तो बड़ा, पिपीली का इतना तो बड़ा है, छोटी सी कीड़ी। कीड़ी का मार्ग है वो आप बदल जाए, एक कीड़ी मार्ग से जाओ एक तो, और एक उड़ करके विहंगम मार्ग, क्या उड़ करके जाए विहंगम, ये पक्षियों का मार्ग उड़ने का। तो उड़ने से मार्ग में बहुत जल्दी पहुंच जाए, तो उड़ने का मार्ग एक है पिपीली का मार्ग, मैंने उड़ने का मार्ग नहीं आओ तो पिपीली मार्ग में चलो, क्या बैठे रहे यहाँ, जैसे चलो वैसे चलो भाई, पैदल चलो, साइकिल से चलो, रिक्शे से चलो, मोटर से चलो, हवाई जहाज से चलो, चलो अपने चलना है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ क्या बैठे रहे, चलेंगे पहुंच जाएंगे, समय लगे पहुंचेंगे ही, जो चलेगा वो तो पहुंचेगा ही। जिसमें पारमार्थिक मार्ग में नेहाभिक्रमणा सोचती, इसका उपक्रम आरंभ कर दिया, उसका विनाश नहीं होता, थोड़ा भी किया है इस उद्देश्य से, तो वो भी सच्चा रहेगा, उतना पक्का रहेगा, सदा नित्य रहेगा। वो थोड़ा भी महान भय से रक्षा करेगा, जन्म मरण से रक्षा करेगा, थोड़ा भी, थोड़ा क्या सत्संग कर लिया, ये बातें सुन ली, ये भी निर्देश नहीं जाएगी, ये भी काम करेगी और इससे कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु विहंगम मार्ग ज्यादा अभी पहुंच जा, और थोड़ी दूर में विहंगम मार्ग कहते हैं सुगमता के लिए। विहंगम को तो देरी लगती है, पक्षी होता है उड़कर जाए तो देरी लगती है, इसमें विवेक का चट लग जाए। महाभारत में इसमें योग वशिष्ठ में आया है कि फूल के मलने में देरी लगती है, बोध होने में देरी नहीं लगती। क्या बताएं विहंग मार्ग के क्या कहें उसको, क्योंकि तो स्वतः है जिसको जानना है इसमें बाधा क्या लगे, और नहीं है उसका त्याग करना इसमें बाधा क्या लगे, नहीं है वो तो त्याग कर रहे हैं आपका निरंतर, जो आपका त्याग करते हैं उसे आप त्याग कर दो, यार आप अपने में रहते ही हो, उसमें अपने रहो, मैं निहाल हो गए, बोध हो गया। मन को निग्रह करना हो तो इतना मन का बताया है, उसे पता है बिना अंकुश के महामतंगज है, बड़ा हाथी मत वाला, उसमें अंकुश के बिना वो वश में नहीं होता। ऐसे मन को कोई वश में करना चाहे तो बिना युक्ति के उसको वश में नहीं होता, इसकी युक्ति है, उस युक्ति अंकुश से मन को वश में करो, वश हो जाएगा। तो वह पता ही युक्ति क्या है भाई, उसको महामत वाले हाथी को वश में करने के लिए, मन मन को वश में करने के लिए। तो अध्यात्म विद्या अधिगमः साधु संगम एवच वासना संपरित्याग और प्राणस्पंद निरोधनम, ये चार उपाय बताया। सबसे एक नंबर का उपाय है अध्यात्म विद्या अधिगमः। अध्यात्म विद्या कौन सी, जड़ चेतन का विवेक, ये अध्यात्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ऊंची विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्या, अध्यात्म विद्या भगवान का स्वरूप है। तो अध्यात्म विद्या से जितना मन निग्रह होता है उतना नहीं होता, परंतु अध्ययन विद्या का अधिकारी होना चाहिए। अब कहते अधिकारी आप ले लिया, अरे मैं अधिकारी का खंडन नहीं करता हूँ बाबा, मेरी बात समझ लिया करो, मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ बात, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जल्दी तत्व को प्राप्त हो जाए, हरेक हो जाए, पापी दुर्ह जाए गुणी सब, परमात्मा तो प्राप्ति के सब अधिकारी, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप प्राप्त अनाधिकारी कैसा, कोई दूसरे पर हक लगाना हो तो कोई अधिकारी नहीं हो सकता, मैं अपने स्वरूप में जाना मैं अधिकारी सब अधिकारी है ये मानता हूँ, फिर भी अनाधिकारी मानता हूँ, इसमें इच्छा ही नहीं है, जोरदार चाहना ही नहीं है, तो क्या किया जाए, मेरी बात सुन कर मेरे को हो जाए मेरे को हो जाए, भाई तुम्हें चाहना ही नहीं है, रुपये पैसों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, शरीर के आराम के लिए आप लालायित रहते हो, परमात्मा तुम कैसे मिल जाएगा, क्योंकि अंतगण शुद्धि, अंतगण शुद्धि इतनी मानता हूं कि नाशवान में राग न रहे, बस ये अंतगण की शुद्धि इतनी हमारी है, नाशवान में राग है ये अशुद्धि अंतगण की। विस्तार से संतों ने कहा है मल है पिक्षेप है आवरण है तीन दोष है सब, ये सब ठीक है, प्रक्रिया सब बढ़िया है, परंतु जिसको जल्दी लग रही हो प्रक्रिया में कैसे फंसे बेचारा, कितना वर्ष लग जाए उसको, तो जल्दी काम बनाना है, चटपटी मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब चुन जाएगा सब, उसके देरी लगेगी नहीं, और धीरे शांति से जो करना है अपन तो करना है, तो करते रहो एक दो जन्म तीन जन्म में काम हो जाएगा, काम तो होगा ही, जो मार्ग में चला है वो निरंतर थोड़ा ही जाएगा, परंतु यह लंबा रास्ता है, सीधा रास्ता है वो विहंगम मार्ग, तो अध्यात्म विद्या अधिगम, अध्यात्म विद्या को जाना, तो जड़ चेतन का विवेक करके और चेतन रूप अपने आप में स्थित हो जाना है, तो मन आप साफ निग्रह हो जाएगा, स्वाभाविक मन चंचल होता है भोगों की कामना से इच्छा से चाहना से चंचल होता है, वो चाहना मिटगी चंचलता कैसे रहेगी, अभ्यास और वैराग्य दो बताए, वैराग्य से स्थिति में राग पूर्व कहीं जाएगा नहीं और स्वतः घूमता है, वो अभ्यास से मिट जाएगा, स्वतः जो बात याद आती है तू याद नहीं याद आ गई हूँ, कभी गंगा जी याद आ गई, कभी बीकानेर याद आ गई, जोधपुर याद आ गई, बम्बई याद आ गई, ये यूं याद आती है, ऐसी प्रतियां तो अभ्यास से मिटेगी, और भोग चाहिए रुपया चाहिए चीज चाहिए ये चाहना वैराग्य से मिटेगी, इस बात से वैराग्य और अभ्यास दो बात बताई, तो इसे मिटता है, परंतु अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा तो स्वरूप में स्थित होने पर ना तो निरर्थक चिंतन होगा ना राग रहेगा, राग निरर्थक चिंतन दोनों मिट गया तो अब आशाब हो मनुष्य आप साफ मन प्रश्न हो जाएगा, तो अध्यात्म विद्यादि गमा कि इतना वैराग्य नहीं है इतनी योग्यता नहीं है तो क्या करें, तो अध्यात्म विद्यादि गमा साधु संगम संतों का संग करे, संत का मतलब ऐसा कपड़ा वाला नहीं है, साधु जो वास्तव में सिद्ध पुरुष है साधु पुरुष है श्रेष्ठ पुरुष है जिनका अनुभव है ऐसे पुरुषों का संग करो, संग करने मात्र से मन पर असर पड़ता है, ये बात एकदम ठीक सच्ची है, मन के रोकना विषयों से हटाना कठिन पड़ता है, मन अच्छे संत विरक्त त्यागी ऐसे पुरुष है उनके पास में रहो मन स्वतः शांत हो जाता है, स्वाभाविक कोई इच्छा ही नहीं है, एक आदमी की मैं बात सुनी, घर का आदमी मर गया तो उसको जला दिया करे बड़ी शांति रही, शेर जयदयाल जी थे वहां की सब शांति रही, और वे गए रो हाय हो रोना मच गया रोने लग गए, तो पास में रहने मात्र से एक बड़ा लाभ होता है, यह सत्संग करो तो अध्यात्म विद्या नमस्त समझ में आवे तो सत्संग करो, सत्संग से आपको उपाय मिलेगा, मिलता ही रहता है, आपको पता ही नहीं है इतनी बातें मिल जाती है, आपको कितना मिल गया इसका भी आपको ज्ञान नहीं है, वस्तु मिल गई, सत्संग एक बड़ा सुगम साधन है, स्वाभाविक साधन है, मैं तो कहता हूँ कि कमा करके धनी बने वो साधन करके बनता है। अरे सत्संग मिल जाए तो गोद से लग गया, अब गोद जाने वाले को क्या जोर आवे, कल लंगार आज लखपति कल कंगला। इसलिए साधु संगम ये हो जाए कि साधु संगम भी नहीं मिले, कैसे नहीं मिले, मैं साधु हूँ कृष्ण के पास कैसे जाऊं, मैं बड़े महंतों का चेला हूँ अमुक आदमी में कैसे जाऊं, मैं बड़ा कुल वाला ब्राह्मण हूँ दूसरे की बात कैसे सुनूं, तो उसकी सत्संग बाधा हो जाती है। जो अभिमान है देश का कार्य लेकर के, व्यवस्था को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, गुणों को लेकर, योग्यता को लेकर, पद को अधिकार को लेकर जो अभिमान है, वो अभिमान सत्संग में जाने नहीं देता। अगर सत्संग में जाएगा तो लाभ उठा नहीं सकता। समझते हैं कि ये कहने वाले इनको मैं 10 वर्ष पढ़ा दू, मैं इतना पढ़ाऊ तब आप पढ़ा दू इनको, ये क्या जानते हैं ये, तो वो सत्संग नहीं कर सकता। तो सत्संग इस बात से सत्संग बाधा लगे तो क्या करे कि वासना संपत्ति त्याग। ये जो भोग वासना है, लोक वासना है, शास्त्र वासना है, ये वासना है, इनका त्याग करो। लोग मेरे को अच्छा समझे, अगर स्वर्ग लोगों में जाओ, लोक वासना है, शास्त्र वासना है, इतना पढ़ लो, इतना और पढ़ लो, ये शास्त्र वासना है, और शरीर वासना है, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, आरोग्य रहे ठीक तरह से, जो साधन बन जाए, शरीर ठीक नहीं रहा तो कैसे करेंगे, बीमारी आ जाएगी आ जाएगी, ये है शास्त्र देह वासना। ऐसे ही पुत्र हो, हमारा धन हो, ये धन वासना है, तो इस वासना का त्याग करो। सत्संग नहीं मिले तो वासना का त्याग करो। वासना द्विविधा प्रभुता शुद्ध से मलिनी, तथा वासना एक शुद्ध होती है एक मलिन होती है। सांसारिक नाशवानों की जो वासना है वो मलिन है, और मन ठीक हो जाए, भगवान में लग जाए, सत्संग मिल जाए, ये भी एक वासना है, पर ये शुद्ध वासना है। तो शुद्ध वासना के द्वारा अशुद्ध वासना का त्याग करो, शुद्ध वासना को लगाओ। ऐसे फिर वासना का त्याग करो, फिर शुद्ध वासना भी त्यागना है, क्योंकि शुद्ध वासना थोड़ी देखनी है, वास्तव में तत्व को प्राप्त करना है। तो वासना का परित्याग करो, कि वासना का परित्याग भी हाथ में न हो तो क्या करे, कि प्राणस्पंद निरोधन प्राणायाम करो। प्राणायाम करने में शुद्धि आती है, एकाग्रता में लाभ होता है, पापों का नाश होता है प्राणायाम से। तो प्राणायाम करो, प्राणस्पंद निरोधन, ये चौथा दर्जा बताया। अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम एवच वासना संपरित्याग और प्राण स्पंद निरोधनम, ये युक्तियां बताई। इन युक्तियों से आप मन को एकाग्र कर सकते हो। तो मन एकाग्र करने के लिए अध्यात्म विद्या भी काम किया। अध्यात्म विद्या तो ठेठ परमात्मा तक पहुंचाते, मन का निग्रह करना तो कहीं रह गया मार्ग नहीं। इस दृष्टि परमात्मा तत्व को प्राप्त करो। ऐसा योग वशिष्ठ में भगवान राम जी के प्रति वशिष्ठ जी ने विवेचन किया है। तो उसे क्या होगा, ये जो दो विभाग बताए ना पहले, एक शरीर है एक शरीरी है, गीता का आरंभ भी इससे ही हुआ है। अशोच्यानंद शोचस्तो, यहां से 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक है। इन 20 श्लोकों में यही बात बताई है, शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह अलग है, देही अलग है। लोग कहते हैं आत्मा अनात्मा का विवेक है, आत्मा अनात्मा नाम ही नहीं है। 30 श्लोकों में आत्मा अनात्मा जीव ब्रह्म ईश्वर नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में नाम ही नहीं है, देह देही शरीर शरीरी नाशवान अविनाशी। आत्मना तो नाम ही नहीं, तो शरीर शरीर दोनों को अलग समझना ये खास प्रकरण है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 11वें से शुरू होता है और 30वें श्लोक तक ये प्रकरण है। इनको ठीक मनन करो, और बताया है ऐसे ही। तो इसमें मनन करते हुए अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या तो आ जाएगी, अध्यात्म विद्या आ जाएगी, मन आप सामने रोध हो जाएगा। क्यों, कोई भी काम होता है प्रयोजन को लेकर, जब स्वयं चेतन आप हो तो जड़ से कोई प्रयोजन नहीं, तो जड़ में मन क्यों जाएगा? आपका मन जाएगा जहां ऐसा ही। एक संत से किसी ने प्रश्न किया कि मन बस में कैसे हो, तो संत ने पूछा मन कहां जाता है? कि मन तो हरेक जगह चला जाता है। संत बोलना हरेक जगह नहीं जाता है, तो कहां जाता है? आपने जहां संबंध जोड़ रखा है वहां जाता है, आप संबंध मत जोड़ो वहां संसार नहीं जाएगा। कि महाराज इनमें उठपन कई बातें याद आ जाती है। तो उन्होंने बोला वायसराय के साथ चाय पीने का मन में भाव आता है कि नहीं? क्यों नहीं आता? कि वायसराय के साथ बैठकर चाय पिएंगे आती मन में कि नहीं? तो हवेली कैसे जाता है? हरे जगह समझो, हरे जगह नहीं जाता है। अभी के हिंदुस्तान में रेल सब जगह जाती है, सब जगह रेल मिलती है, जहां जाओ मिलती है। इस पंडाल में आती है रेल? पंडाल में नहीं आती। तो सब जगह कैसे जाती है? जहां लाइन लगी है, पटरी बनी हुई है, वहां वहां जाती है। ऐसे मन का आपने जिसके साथ राग से, किसी के साथ द्वेष से, किसी के साथ ईर्ष्या से आपने संबंध जोड़ लिया, वहां वहां जाएगा। लाइन लगी वहां जमन जाएगा, जहां लाइन लगी नहीं लेट कैसे जाएगी? तो मन तो संबंध आप जोड़ते हो वहां जाता है। तो मन हमारा ऐसा ही मन हमारा नहीं। महाराज आप ऐसे हो तो संबंध जोड़ लेते हो, फिर मन जाता है हमारा। आप संबंध मन जोड़ो नहीं जाएगा, जहां संबंध जोड़ा ही नहीं वहां कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। आप इतने बैठे हो, मलिन चीज आप खाते नहीं तो क्या मन में जाता है? मन जाता है मांस की दुकान में? कैसी बात करते हो? उल्टी हो जाए तो फिर कैसे जाता है? सब जगह कैसे जाता है? आप जहां संबंध जोड़ते हो वहां जाता है। इस तरह से मन वहां जाता है संबंध हो। तो आध्यात्मिक विद्या में कि हमारे काम की चीज नाशवान चीज हमारे काम की नहीं, तो अध्यात्म कैसे जाएगा चित्त वहां? अविनाशी तत्व को हम प्राप्त करते हैं, उसमें बैठे हैं। नाश चीज जो हम लेते ही नहीं तो उसमें मन कैसे जाएगा? ये तो हम रुक जाएगा ठीक तरह से। असली चीज है असली अध्यात्म विद्यादि गमा। तेजी का वैराग्य हो तो बहुत जल्दी होता है, और तेजी का वैराग्य न हो उस तो वैराग्य चाहिए, नहीं तो अध्ययन विद्या चलेगी नहीं। वो वैराग्य होगा तो देरी लगेगी, और जल्दी होगा। अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम, सत्संग करो। अध्यात्म विद्या पूर्ण है तो सत्संग करो, सत्संग में अध्यात्म विद्या आएगी। सत्संग में दो बातें हैं, चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे ज्ञान का मार्ग हो। ज्ञान का मार्ग हो तो अध्यात्म विद्या होगी, भक्ति का मार्ग होगा तो भगवान में प्रेम होगा, भगवान की कथा होगी, भगवान के चरित्र होगा, भगवान के गुण होगा, भगवान की लीला का वर्णन होगा, लीला का ही चिंतन होगा, उसका ही चिंतन होगा, तो मन शुद्ध हो जाएगा। आप साफ भगवत कथा सुनने से सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिरनु क्रमेश्यति सकाम प्रसंगात्म वीर्य संविदो। अच्छे संत महात्माओं का संग होगा तो भगवान के प्रभाव से भरी हुई, महत्ता से भरी हुई भगवान की कथा होगी। मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा, कानों को वो हृदय को रस देने वाली कथा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान की लीला, ये कथा होगी। भवंत हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात, उनके सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति अनु, श्रद्धा हो जाए, प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाएगी, अनुक्रम सब हो जाएगा। तो सत्संग से स्वतः लाभ होता है, स्वाभाविक लाभ होता है। जितना मन देकर सुनता है उतना उसको लाभ होता है। बिना पढ़े शास्त्रों के तात्विक बातें समझ में आ जाती है सत्संग करने से। तो ये भागवत भी लिखा गई, निवृत्तर्षेपगीयमात भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। वो कैसे यज्ञ? जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग करते हैं, साधक भी सत्संग करते हैं, और विषयी पामर के लिए भी बताए कि सत्संग करो। निवृत्त से उपगी भोषदात मनोविरामात, भोषदे जिज्ञासु के लिए और विषयों के लिए मनोविरामात। मन में ऐसी लगे संसार में लगा वो भगवान में लग जाएगा, सुगमता से वो लग जाती ना उधर। तो भक्तों की और भगवान की कथाएं, भक्तों के चरित्र आप सुनो, घंटा दो घंटा रोज या मन लगा करके भक्तों के चरित्र पढ़ो, बिना सोचे समझे अंतकरण निर्मल हो जाएगा। तो सत्संग से ये बातें मिलती है तो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने से क्या हो जाता है कि संसार से उपरती होती है। संसार में जितना राग है उतना राग नहीं रहता, भजन ध्यान करते हैं शादी उसमें प्रेम हो जाता है। तो कुछ वृत्तियां इधर बन गई, कुछ शास्त्र संसार में रही, नहीं तो सब की सब संसार में ही वृत्तियां रहती है। और भजन ध्यान सत्संग करते हुए परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, अथवा भगवान में प्रेम हो जाएगा। भक्ति मार्ग में तो भगवान का प्रेम हो जाएगा, और ज्ञान मार्ग में विवेक हो जाएगा, ठीक समझ में आ जाएगी तत्व की बात। तो सत्संग के द्वारा बहुत समझ में आती है, बहुत विशेष दर्श समझ में आती है। क्योंकि कहने वाले वो समझने वाले हैं, तो समझने वाले से समझ से ठीक समझ में आती है। अगर भगवान का भरोसा रखे तो भगवान की कृपा से मामूली समाचार नहीं पढ़ा हुआ भी समझ जाएगा। भगवान की कृपा के एक अलौकिक विलक्षण है, वो सब जगह काम करती है। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा काम करती है। तो उसे दो विभाग है जो समझने, क्या करो कि भगवान में लग जाओ। तस्मा केना उपाय न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान कृष्ण में मन लगा दो। अरे भैरव भय से लगाया मन, कंस का कल्याण हो गया। बैर से मन लगाया, शिशुपाल का कल्याण हो गया। वृष्टि वंशी अपना कुटुंब से मन लगाया तो गया। उद्धव जी आदि ने भक्ति करी तो मन लगाने गया। नारद जी ने मन लगाया, भगवान कृष्ण में कुंड कल्याण हो गया। किसी उपाय से भगवान में लगा दो, बैर से लगा दो तो कल्याण करेगा। अन्य संस्कृत बिना इच्छा ही आग पकड़ोगे तो आग तो जला जाएगी। ऐसे भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, वो आपके अंतर्गुण निर्मल बना देगा, शुद्ध बना देगा एकदम ही। आपको शुद्धि के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा। भगवान में जितना रस जागा उसे तल्लीन होकर सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, शुद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से आपको शुद्धि हो जाएगी। तो ये दो जो विभाग है, उस विभाग में वो जो संसार से अलग होने की बात, सत्संग करने से भगवान में लग जाने से अलग करना नहीं पड़ेगा। भगवान में लग गया तो आप ही अलग हो जाएगा। भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही भजन है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तस्मात एक परत्व से एक परायण हो गया। उसी का ही कहना है, उसी का ही सुनना है, उसी का ही समझना है, उसी का ही देखना है। जैसे अपने कीर्तन करो तो कीर्तनी बोल रहे हैं, कीर्तनी सुन रहे हैं, कीर्तनी की ध्वनि हो रही है, आप साफ भगवान में मन लग जाते हैं। लगाने की जरूरत ही नहीं, मन लगा कर कीर्तन हो जाएगा। इस वजह से बहुत सुगमता से काम हो जाता है, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। ऐसे सत्शास्त्रों के पढ़ने से लाभ होता है, भगवान के भक्ति चरित्र पढ़ने से। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के। मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने पर ठीक हो जाएगा। तो इनको पढ़ो सुनो उसमें लगे रहो। आप सत्संग में भजन ध्यान में लगे रहो, लगे रहो। जैसे फल होता है काकड़ी मतीरा बेल के लगा रहे, लगा रहे आप साफ अच्छा हो जाता है, कच्चे से पक जाता है और कड़वा खाटा से मीठा हो जाता है। लगा रहे तोड़ो मत, बीच में तोड़ोगे तो दोनों तरफ आंसू आ रहे और पड़ा पड़े हो जाएगा। जब पग ठीक रहे आप सागर हो जाएगा, तोड़ना पड़ेगा ही नहीं। ऐसे सत्संग में भगवान से लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई। तेरी बिन बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई। नाम जब करेंगे, कीर्तन करेंगे, पुस्तक पढ़े, कभी भगवान की लीला पढ़े, कभी भक्तों का चरित्र पढ़े, लगे रहो उसमें, वो आप साफ ठीक होगा। और भगत पर सत्संग होगा, मार्ग में विवेचन होगा, पथ पकड़ में आ जाएगा। कुन उन्मुख हुए हुआ है ना, जैसे वर्षा बरसती है तो समुद्र में ही वर्षा बरसती है, तो सीप कोई यूं मुख रहती है, मुख में पड़ा मोती हो जाता है, तो सीप उन्मुख हो जाए ना, तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, भगवान की कृपा मानो और चिंतन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, उसमें रात मिल रहे हो, बहुत सुगम सा से कल्याण हो जाए। माँ की गोदी में रहने वाला बालक बड़ा होने का उद्योग करता है, कोई परिश्रम करता है मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो जाए वो गोदी में, ऐसे सत्संग मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संग मारे गोदी बैठा पड़ा रहे, आप बड़ा हो जाता छोड़ा पड़े, ये आप हम हो गए ना सभी, जन्म जब ऐसे थे क्या, माँ की गोदी में हो गए अपने, ऐसे सत्संगति है, ये माँ है, इस गोदी में पड़े रहो, आप साफ ठीक हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, आप साफ ठीक हो जाए, आप साफ। बड़े बड़े शास्त्रीय पंडित केवल शास्त्र पढ़ा है, वे कथा करते हैं, उनमें सत्संग करने वाले कहते हैं ये क्या पंडित जी इतने पढ़े हुए क्या कहते हैं, उनको पसंद नहीं आती है मार्मिक बातें, जिन लोगों ने सुनी है उनको वो इतनी बढ़िया बात नहीं होती, केवल पुस्तकों की बातें सूखी सूखी जी लगती है, और साधन की और गहरी बातें तो मस्त हो जाते हैं, सत्संग बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ, तो ये उनमें ज्ञान हो जाता है बिना पढ़े हुए, उनमें ऐसी बातें हो जाती है कि भाई एक सिख की बात कह, बीकानेर की बात है, दमाणी चौक में राम प्रसाद जी मुंदड़ा की छोरी, मैंने इस तरह बड़ा भारी, तो एक साधु कथा कर रहे थे, तो अपने पिता ने बाबू जी ये तो सिख की बात कहे, और सिख की बात कहे, मैंने बड़े मैंने छोटी छोरी जगह उन्हें कह गया, तो सीख की बात कह गए, कथा कर रहा था कथा हो गया, तो सीख की बात कह गए, आश्चर्य में दस बारह साल की छोरी होगा, अब तो बच्चारी छोरी हो गया उसके, मैंने राम प्रसाद जी मुंदड़े की लड़की, बड़ा आश्चर्य बड़ी पढ़ी लिखी नहीं, कुछ ज्यादा अवस्था नहीं, भाई कहते हैं तो सीख ही सूखी बातों के, और सीख भी बातों के, तो सीखी हुई बातों से भी लाभ होता है, न करने के पास अन्न अकरणा तो मन करने भी श्रेय, न करने के पास करना अच्छा ही है, परंतु वास्तव में अनुभवी पुरुषों के जो वचन होते हैं वो विलक्षण होते हैं, भगवान की कृपा से अनपढ़ को और अनसमझ को भी बात आ जाती है, कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं भगवान के भगत, वो पढ़े भी नहीं शास्त्र भी नहीं जानते, पर बात ऐसी मार में कह देते हैं तो क्या है, भगवान की कृपा से आ जाती है, भगवान का भरोसा है, अहंकार करते हैं मैं बढ़िया कह दूं, फिर बढ़िया नहीं आती, भगवान की कृपा से आती है, बहुत विचित्र विचित्र बातें आ जाती है, छोटे छोटे बच्चों में ऐसी बात आ जाती है। जयदयाल जी कशेरा थे, वो भी ट्रस्टी थे, तो अगर नाथ मन चाकर राखो जी, नाथ मन चाकर राखो जी, ऐसे सुबह पद गया करते हुए, तो वे नीचे थे और तीन चार तले ऊपर उनका पोता वो खेल रहा था, तो सुना ऐसे बाबू जी धन चाकर रख लिया, क्यों हल्लो करो, उसने गाना छोड़ दिया, वो क्यों चाकर रख लिया, अब बहुत चाकर हो गया, छोड़ा के वो समझे गया कुछ क्या उसकी परीक्षा है, बाबू जी क्यों कहा, बाबा जी दादा को बाबा जी कहते हैं, चक्कर रख लिया, तो ये महाराज छोड़े कह दे ऐसी बात, मार्मिक बात बता दे, आप ध्यान रखे दो, तो ऐसी बातें हैं, आप लगे रहो सब ठीक होगा ही, इसमें क्या संदेह है, तो इस तरह से अपना विवेक जो है सत असत का, नित्य अनित्य का, ये विवेक शास्त्रों से हो जाता है, सत्संग से हो जाता है, भजन ध्यान से हो जाता है, सब इसे करने से विवेक हो जाता है। तब आप साफ दूध का दूध, पानी का पानी, हंसे यथा क्षीर मिवामु मध्यात, जैसे जड़ के बीच में रहने वाले दूध को हंस पी लेता है, पानी छोड़ देता है। संत हंस गुण गह पय परिहरी बारी विकार, बारी विकार छोड़ हंस पी लेते हैं। तो वहां स्वतः ही अभ्यास होता है, उन्हें बिना कहे सुने साफ आप साफ होता है। तो सत्संग में लगा रहो आप, जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना, इसमें लगे रहो लगे रहो, लगे लाभ होगा। कहते दो बात कहते हैं, अभी तो पहले कहते अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अब कहते हैं लगे रहो। तो हमारे को धोखा देते हो क्या? धोखा नहीं देता हूँ, अधिकार है कुछ गाने कहता हूँ, आप लोग लगे रहो। अब असत असत का विवेक नहीं हो तो हम उसको अली के बैठे रहे, फिर माल को न मिले तो रोटी भी नहीं खावे, कचने भी नहीं खावे। अरे भूखों क्या मरो, कहा तो लोग रोटी साग मिले को। अरे ये उसमें सहायक है, वो विवेक होगा ना उसमें, ये बड़े बड़े सहायक होगा भजन ध्यान सब ध्यान। तत्व की प्राप्ति में आप अभ्यास लगा हुआ अभ्यास नहीं जाएगा। अभ्यास तो मन बुद्धि इंद्रियों के साथ से होता है या तत्व इनसे त्याग से होता है। इस वास्ते तत्व जहाँ प्राप्त होता है वहाँ अभ्यास का नहीं, मन लगाने के लिए अभ्यास है। तो वो भी अध्यात्म विद्या हो जाए अथवा भगवान का प्रेम हो जाए, कीर्तन में मस्त हो जाओ तो आप सब मन निग्र हो जाता है। कीर्तन करने वाले जो मन लग जाए तो देखो 15-20 मिनट आध घंटा कीर्तन हुआ, मन कहीं गया, बीच में कोई बहुत थोड़ा जाए नहीं जाएगा, उसमें मस्त हो जाओ कोई तो सुगमता से मन लग जाए आज कुछ भी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों ऐसे विचित्र है जो निहाल करते आदमी को। जब ज्ञान कलया कृतम, ज्ञान की कला मात्र से काम हो जाता है। थोड़ी सी भक्ति भी भगवान है प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषय ना भी भूयते। जो प्रगल्भ भक्ति हो जाती है वहां विषय उसको तंग नहीं करते, भोगों में उसे नहीं जाता, भगवान में लग जाता है। क्यों जाएगा मन? मन जाता है भगवान में प्रेम न होने से, इसमें विवेक न होने से। भूत प्रेत पिशाच दुष्ट होते हैं, इनका विषय त्यागना कठिन होता है। जहां काम की बात आई है, शंकर पर विजय करने के लिए कामदेव गया है कि ब्याह हो जाए, इनकी लड़का जन्मे तो वो असुरों का नाश करेगा, तो वो गया है। तो उस समय में आप प्रकरण पढ़ लेना, पेट भूत सदा काम के तेरे जानी है, सदा काम के तेरे आई। तो ऐसा कौन रहता है कि भगवान में जिसको रस नहीं लगता, तत्व ज्ञान में रस नहीं आता, भजन ध्यान से रस नहीं आता, वो सदा काम के तेरे, उनके काम के सिवाय सुख कहीं दिखते ही नहीं, बेचारे क्या करे। परंतु जिसका भगवान में मन लग गया है, ये भगवान का है, तो वहां वे बचे जो भगवान की कृपा भगवान का सहार लिया है, उस क्षण में तो वही बचे और वो नहीं बचेगा, तो भगवान के चरणों का सहारा है। महाराज नारद जी महाराज गए जो सहज विमल मन लाग समाधि, देखा एकांत समय गंगा जी बह रही है, उत्तराखंड की भूमि है, मन लगा चट राम राम भजन करने लग गए। तो सहज विमल मन लाग समाधि भगवान लग गया, काम आया कितने किया कुछ नहीं पर गया। तो वहां क्या कहा है कि सीमक चाप सके बोलतासु बड रखवा रमापति जासु, जिसके रमापति रखवा क्या करे, कहवा भगवान के शरण हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वो सब सब ठीक हो जाता है। तो भगवान में लग जाओ, लगे रहो सत्संग भजन ध्यान कीर्तन लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। काम भक्ति में भगवान देते हैं ज्ञान, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, यदि विमान ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान मैं दूर करता हूँ, वो अज्ञान की चिंता करते ही नहीं, अज्ञान क्या दूर करना है क्या नहीं है, तो भगवान का भजन करना है। इस वास्ते भगवान में लगे रहो। तो बात मैंने आरंभ की थी कि दो चीज है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। अब ये जीव है बीच में परमात्मा अठिने संसार, दोनों के बीच में जीव, इसकी वृत्ति चलती है संसार में। तो नाशवान अविनाशी दो चीज है, अब अविनाशी अविनाशी में त्याग कर दे, अविनाशी में स्थित हो जाए, निहाल हो जाए। उस देश की प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए अपने भावों को आचरणों को शुद्ध बनावे, अंतकरण को निर्मल बनावे, अपने क्रिया अच्छी बनावे, भाव अच्छा रखे, तो उसे ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही है, मानो अभी रामायण का पाठ होने वाला है, तो रामायण का पाठ करने वाले और परिचित सत्संग करने वाले हैं, भीनाश्र के रहने वाले हैं, पुराने सत्संगी हैं, वे भाई बहन थोड़ा पीछे बैठे, क्योंकि वे तो जानते हैं। नए नए जो सत्संगी उत्कंठित रखने वाले हैं, उत्कंठा करने वाले, रामायण की रुचि रखने वाले हैं, उनको मौका देना चाहिए विशेषता से। इस बार से हल्ला नहीं करे, व्यवस्थापक जहां बैठा हो वहां बैठ जाओ, आगे ही आगे बैठने की इच्छा करो। तो आप देखो, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को गोदी में रखते हैं, तो आप सुनने वाले हो, जानने वाले हो, तो आप बड़े भाई बहन हो। अब थोड़ा जानने वाले बालक भाई बहन है, तो उनसे प्यार करो, गोदी में रखो, आगे उनको बैठाओ, भाई सुनो, रुचि बने बने, रुचि बन नहीं सिखाने कोई करने की जरूरत नहीं है, उनको लाने की जरूरत नहीं, लाने की जरूरत भी है, बना के बैठाओ करो नहीं, परंतु जो बैठना चाहते हैं उनको नए नए भाइयों को आगे बैठाओ, नहीं तो परिचित है वो जाए। ऐसे सत्संग कर रहे हैं, अरे ये प्रबंध करने वाले भाई बहन है, प्रबंध करने वाले बहनों भी है, भाई लोग बहुत से प्रबंध करने वाले हैं, वे अपने माँ को भाई भाई को स्त्री भाई को उनको आगे गए बैठावे, तो आप यहाँ भी स्वार्थी करोगे। अरे जो सुनना चाहे वो लाओ, अपने कुटुंबियों को अगर बैठाओ, अपने कुटुंबियों को भी वहां रहो। ब्याह का घर होता है, कोई रसोई करने जाती है ना वहां, तो अपने छोरा छोरी बुला लें, खिला दे, खाए खाए खाए, ये काम नहीं है ठीक, अपने छोरा ले थपड़ी जा घर जा, यहाँ जिंदगी बना, आप खुद गए तो बन घर पर जाओ जी में, पक्षपात करो आप, तो क्या प्रबंध करते हो। अरे भाई पक्ष पर तो धन है, दू छोड़ घनी है, और जगह भी मत करो मत करो मत करो, घनी जगह एक घर तो डाका नहीं टाल है, अच्छा तो कम कर क्या रखो भाई, जो सुनने वाला है उसे उनको रखेंगे भाई। वह किसी हमारी है कि भाई तुम्हारा, मैं तुम्हारे पक्ष नहीं कर सकता, क्यों मैं प्रबंध करने वाला मैं हूं, मैं पक्ष कैसे करूं, मैं आफत हो गई, दूसरों का तो पक्ष कर ले, घर वालों का पक्ष कैसे करें, हम विधि नहीं है। इस तरह से सबको समझाओ और अच्छे सबके सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले, इस तरह का प्रबंध करो, जैसे कर रहे हैं ना, लोग ज्यादा बढ़ गए तो छाया कर दी, अरे लोग इधर कर दी, वहां छाया कर दी, वहां पर भी, तो ये काम प्रबंध करने वालों का है कि भाई सब भाई लोग इससे लाभ ले रहे। अब वहां बैठे उनको कहते हैं हम तो पास में आएंगे, अब सब लोग ऐसे कैसे मिलेंगे, सब कैसे मिल सके भाई, अपने ठोर पर बैठो, जहां जहां सुनता है वह मैं जो कोई अर्ज नहीं है, एक कहते हम तो सामने बैठे तो ऐसा लगता है, अब सब ने तुम ही बैठो तो सभी बैठे तो सभी सामने कैसे बैठेंगे, हजार लोगों का मिशन तो कैसे कर सकते, इस बात ज्यादा हो तो उनको मौका दो, अपने पक्ष ये उनका मौका दो, जो ठीक सुने और सुनना चाहते हैं, जूते से बलसाण नहीं बीतन नहीं लाना, देखो लाओ ही मत ना, सवारी में आओ तो सवारी जरूर नहीं लू जूतों की, लाओ तो फिर एक जगह रखो और आप प्रबंध करो भाई, चोरी ना हो जाए ऐसा प्रबंध करो।